जो कि नाम वंदना से शुरू किया है उसमें नाम और नामी का प्रकरण चल रहा है। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे आवत हृदय स्नेह अभिषेक। अगाड़ी कहते हैं नाम रूप गति अकथ कहानी समुझत सुखदन परति बखानी। नाम और रूप की जो गति है इसका जो वर्णन है ज्ञान है इसकी जो विशेष कहानी है वो समुझत सुखद समय में बड़ी बड़ी सुख देने वाली है परंतु न परत बखानी इसका विवेचन करना बड़ा कठिन है क्योंकि नाम की भी विलक्षणता है और रूप की भी विलक्षणता। अब दोनों में कौन बड़ा कौन छोटा और क्या कुछ विलक्षणता है तो समझने में तो बड़ी सुख देने वाले क्योंकि भगवान को याद करो तो भगवान का चाहे नाम याद करो चाहे भगवान के स्वरूप को याद करो जहां समझने में मन लगाया तो महान आनंद मिलेगा ही क्योंकि ये संसार की तरफ वृत्ति रहने से अशांति होती है और परमात्म तत्व की तरफ वृत्ति रहते ही शांति मिलती है। ध्यान देने की मार्मिक बात है मानो संसार का चिंतन होगा संसार का महत्व अंतकरण में होगा तो इससे अशांति पैदा होती है होगी और परमात्म तत्व की तरफ विचार होते ही अशांति मिट जाएगी। आप ध्यान दें फिर कहता हूं मैं ख्याल करें सर्व लोग शांति चाहते हैं और दो तरफ वृत्ति रखी है संग्रह करना और सुख लेना इसमें विचार है। जब तक ये सांसारिक पदार्थों के संग्रह की रुचि है और इन पदार्थों के संयोग जन सुख की रुचि है तब तक जीव को शांति नहीं मिल सकती। किसी के वहम होगा तो पता नहीं हमें तो भाई बहुत विचार करने पर ये बात मिली है कि जहां कहीं अशांति होती है हलचल होती है दुख होता है तो संग्रह अथवा सुख की इच्छा मन में कुछ न कुछ है इसकी इच्छा के बिना इस वृत्ति लगे बिना अशांति कभी आ नहीं सकती क्योंकि अशांति के साथ इसका स्वयं का संबंध नहीं है। स्वयं का संबंध शांति के साथ में स्वतः है स्वाभाविक। जब ये जड़ की तरफ विचार करता है अचेतन की तरफ जड़ अचेतन नाशवान क्षणभंगुर उत्पत्ति विनाशशील इनकी तरफ जब विचार रखता है तो अशांति जबरन आवेगी ही। इसका तात्पर्य है कि ये ध्येय तुम मत बनाओ ध्येय परमात्मा को बनाओ। तो अभी ज्यादा न करके इतना ही कहता हूँ समझो तो सुखद इनको समझते ही सुख मिलेगा न परति बखानी परंतु इसका विवेचन करना बड़ा कठिन है क्योंकि भगवान अनंत भगवान के नाम अनंत भगवान की महिमा अनंत भगवान के गुण अनंत परमात्मा तत्व है वो चेतन तत्व है उसकी विलक्षणता है। इस वास्ते वाणी क्या वर्णन करते ये तो वाचो निवर्तन थे अप्राप्य मन समेत दे जाने वाणी मन भी वह कल्पना नहीं कर सकता बुद्धि वह कुंठित हो जाती है तो वर्णन क्या होगा। अब वर्णन करते हैं नाम और नामी का। ये अभी महिमा गाई और नाम को श्रेष्ठ बताया। अब कहते अगुण सगुण भी से नाम सुसाखी उबोधक चतुर दुहाखी। परमात्म तत्व के दो स्वरूप बताए हैं वो एक अगुण स्वरूप है एक निर्गुण मानो सगुण स्वरूप है। निर्गुण और सगुण दो परमात्म तत्व के स्वरूप है। तो कहते हैं कि नाम क्या चीज है अगुण सगुण विच नाम सुसाखी। नाम महाराज है वो निर्गुण और सगुण परमात्मा के बीच में अच्छा साक्षी है। उभय प्रबोधक चतुर्दुभाखी। जैसे कोई आदमी हिंदी जानता हो और अंग्रेजी न जानता हो और दूसरा अंग्रेजी जानता हो हिंदी न जानता हो तो बीच में एक आदमी ऐसा रख दिया जाए जो हिंदी भी जानता हो और अंग्रेजी भी जानता हो तो अंग्रेजी में बोलता है उसका अनुवाद हिंदी में करके वो बता दे, और हिंदी में बोलने वाले का अंग्रेजी में अनुवाद करके उसको समझा दे, तो दुर्भाग्य होता है दो भाषा जानने वाला बीच में तो एक एक के भाव को समझा देता है। ऐसे कहते हैं नाम महाराज निर्गुण और सगुण दोनों के बीच में दुर्भाग्य है। उभय प्रबोधक चतुर दुर्भाग्य, तो दुर्भाग्य होने पर भी कैसा बताया कि चतुर है चतुर, तो चतुर दुर्भाग्य का तात्पर्य क्या हुआ, केवल सगुण को निर्गुण बता दे निर्गुण को सगुण बता दे ये बात नहीं है, किंतु इस नाम महाराज का आश्रय लेने वाला जो भगत है उस भगत को सगुण और निर्गुण दोनों का ज्ञान करा दे, वो तो दुर्भाग्य होता है उसके भाव को तो उसके प्रति समझा दिया उसके कहे हुए भावों को उसको कह दे। तो नाम महाराज क्या ऐसा आपस में नहीं बताते हैं कि तू जपने वाले को अगुण और सगुण दोनों का ज्ञान करा दे, निर्गुण क्या तत्व है सगुण क्या तत्व है, इसको चतुर्गुण ऐसा दुर्भाग्य है जो निर्गुण सगुण दोनों का ज्ञान करा देता है। मां भगवान नाम जपने से सगुण और निर्गुण दोनों तत्व की प्राप्ति हो जाती है। स्वास्थ्य गोस्वामी जी ने और जगह लिखा है कि ये में तो निर्गुण का ज्ञान करा दे और बाहर सगुण का ज्ञान करा दे। कल ही बात कही थी कि भाई नाम जी हदे हरिद्वार, जिह्वा रूपी देह पर दीपक रख दिया जाए तो बाहर और भीतर प्रकाश कर दे, तो बाहर तो भगवान के स्वरूप का दर्शन करा दे साक्षात धनुषधारी का और भीतर से परमात्म तत्व का बोध करा दे, तो दोनों का ज्ञान करा देता है नाम महाराज। ऐसा ये चतुर दुर्भाग्य है। अब दुर्भाग्य होने से इन दोनों में से एक भाषा जानना ही कोई चाहता है कि भाई हम तो निर्गुण तत्व को ही जानना चाहते हैं, तो निर्गुण तत्व के जानने में राम नाम है बहुत ही चतुर है, वो निर्गुण तत्व ठीक समझा देगा, और जिसकी ऐसी भावना है कि हम सगुण के दर्शन चाहते हैं प्रेम चाहते हैं उसकी कृपा है गुण है उनको हम जानना चाहते हैं राम 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 करेगा तो सगुण भगवान के दर्शन करा देगा, और जो चाहेगा भाई सगुण और निर्गुण दोनों के तत्व को ठीक तरह से जानना कि क्या तत्व है तो दोनों के तत्व को जाना देगा, ऐसा विलक्षण नाम महाराज है। अस प्रभु हृदय अचत अविकारी सकल जीव जग दीन दुखारी। अब अगुण सगुण विच नाम सुसाखी चतुर प्रबोधक चतुर उभय प्रबोधक चतुर दुर्भागी, इसलिए अगर ये लिखा राम नाम मणि दीप धरु और जी हे हरि द्वार तुलसी भीतर बार हो और जो चाह उजियार, भीतर और बाहर दोनों उजाला चाहते हो तो राम नाम रूपी मणि जिह्वा रूपी देहली पर धर दो, जो जिह्वा रूपी धरने क्या होगा कि बाहर भगवान सगुण के दर्शन करा दे और भीतर अपने स्वरूप का बोध करा दे, तो भीतर स्वरूप का बोध होता है वो तो इसके खुद के स्वरूप का बोध होता है। हमारे बहुत से दर्शन हैं, विचित्र विचित्र दर्शन शास्त्र है, न्याय है सांख्य है योग है और वैशिष्ट है पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा ऐसे छह आस्तिक दर्शन कहे जाते हैं। इसके सिवाय दूसरे जितने दर्शन और भी है बौद्ध है जैन है और पाश्चात्य दर्शन ईसाई है यवन है, इनके अनेक सिद्धांत है अनेक दर्शन है, उन दर्शनों में बड़े आपस में मतभेद है परमात्म तत्व क्या है आत्म तत्व क्या है और ये प्रकृति क्या है, ये तीनों को लेकर चलते हैं कई दर्शन, तो परमात्मा जीवात्मा और जगत तीनों को लेकर, और कई कई चलते हैं वो परमात्मा को छोड़कर जीवात्मा और जगत दो को लेकर चलते हैं, और चार भाग आदि है वो ये शरीर को लेकर के चलता है, ऐसे दार्शनिक अलग अलग भेद है। परंतु जो परमात्मा तत्व को भी जानना चाहते हैं और आत्म तत्व को भी जानना चाहते हैं, मानो ये जितने जीव है इन जीवों के भीतर जो स्वयं ये परमात्मा का अंश है ये आत्म तत्व है चेतन, और एक परमात्मा है ईश्वर ब्रह्म जिसको कहते हैं परमात्म तत्व, तो परमात्म तत्व को जगा दे। तो जैसे सबरी के प्रसंग में आया है अगर रामायण में, तो भगवान ने ये कहा है कि मम दर्शन फल परम अनुपा, मेरे दर्शनों का अनुपम फल होता है कि जीव पाव निज सहज स्वरूपा, जीव का जो निज स्वरूप है आत्म तत्व उसका ज्ञान भी उसको हो जाता है। तो परमात्मा के ज्ञान से आत्मज्ञान हो जाता है, आप साहब निज स्वरूपा पाव आप साहब पा लेगा। तो भगवान के दर्शन होना और चीज है, निज स्वरूप का ज्ञान एक और चीज है। ऐसे देखा जाए तो अंत में आप एक ही तत्व मिलता है, परंतु इनका भेद माना है। इस भेद के मानने में भी दार्शनिक भेद है, वे अद्वैत मानते हैं, कोई द्वैत मानते हैं। द्वैत मानने में भी विशिष्टाद्वैत सिद्धाद्वैत द्वैताद्वैत और अचिंत भेदा भेद, ऐसे वैष्णवों के मत है। ऐसे सब मतों का ज्ञान अगर कोई करना चाहे और ठीक नाम की निष्ठा की जाए तो नाम महाराज ज्ञान को करा देंगे, और जिसका एक ही लक्ष्य हो ध्येय हो कि निर्गुण हम जानना चाहते हैं तो निर्गुण जना देगा, सगुण जानना चाहते सगुण का ज्ञान करा देगा। उभय प्रबोधक दो के भीतर सब आ जाते हैं, सगुण और निर्गुण के अंतर्गत ये सब संप्रदाय आ जाती। तो वही कहते राम नाम मणि दीप धरु जी दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहसी उजियार, नाम जी अजब जागहि जोगी विरति विरंचि प्रपंच वियोगी, ब्रह्म सुखहि अनुभवहि अनुपा अकथ अनामय नामन रूपा। अब कहते हैं जो जोगी अपने स्वरूप को जानना चाहते हैं, मानो भीतर का प्रकाश चाहते हैं, तो नाम जी अजब जागहि जोगी, वे जोगी जागना चाहते हैं। ये संसार में सब जितने जीव हैं इनको बताया है कि संसार स्वप्नम, ये संसार सोना है, नींद में सब पड़े हुए हैं, नींद आई हुई है। नींद जैसे नींद आ जाती है तो बाहर का ज्ञान कुछ नहीं रहता, इस तरह से परमात्मा की तरफ से जीव प्राय सोए हुए रहते हैं कि परमात्मा क्या है क्या नहीं इस बात का ज्ञान नहीं। तो उसका ज्ञान कोई करना चाहते हैं, अपने स्वरूप का भी बोध करना चाहते हैं, तो वे योगी होते हैं। योगी मानो संसार से जो वियोग होता है परमात्मा के साथ योग होता है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, तो विरति विरंचि प्रपंच वियोगी, विरंचि का प्रपंच जितना ब्रह्मा की मात्र सृष्टि है, इन सब से जो वियोगी हो गए इनकी तरफ ख्याल नहीं है। जो मैंने अभी कहा अशांति रहती है जिसके संबंध से, तो ये जड़ है अचेतन है, इसके संबंध से अशांति होगी ही, नियम है। इस अशांति से जो वियुक्त हो गए विमुख और जोग की तरफ परमात्मा तरफ की तरफ लगे हुए हैं, वे क्या करेंगे, नाम जी है जप जिह्वा से नाम जप करके और वे जाग जाएंगे। तो जग जाना क्या है, तो उनको दिखने लग जाएगा सभी। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी ये श्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने, गीता में आया है दूसरे अध्याय 69वें श्लोक में कि या निशा सर्वभूतानाम, जो संपूर्ण प्राणियों की रात है, मानो मनुष्य परमाणु तत्व की तरफ देखते तो बिल्कुल ऐसे सोए है, अंधेरी रात्रि में कुछ दिखता नहीं, ऐसे कुछ नहीं दिखता। तस्याम जागृति संयमी, वो जो प्रपंच वियोगी है ना संयम, जिसने संयम कर लिया है वो उसमें जागता है। और यस्याम जागृति भूतानि, जिस रात में प्राणी जाग रहे हैं, मेरा तेरा के अगर बड़े सावधान होकर के संसार काम करते हैं, सा निशा पश्यत मुने, पश्यत सत मुने सा निशा, देखते हुए मुनि की दृष्टि में वो रात है। मानो ये जागना अपनी दृष्टि में देखो भले पर जो है बिल्कुल सोए हुए, कुछ होश नहीं है, बेहोशी से ही काम हो रहा है सभी। बेहोशी कहते हैं हम तो बड़े चतुर है समझदार है, कहते ये समझ तो पशुओं में भी है पक्षियों में भी है और वृक्षों में लता में इनमें भी है जंतुओं में भी है। तो ज्ञान है खाना पीना सोना मेरा तेरा लड़ाई झगड़ा आदि काम करना बाल बच्चों का मोह आदि, ये तो सब संसार भर में है। तो इसमें जागना है वो मनुष्यपन नहीं है। मनुष्यपन तो तभी है कि जब उस परमात्म तत्व स्वरूप को जान ले, उसमें जाग जाए। तो वो कैसे जागे भाई, उसका उपाय क्या है कि नाम जी है जब जाग गई जोगी। तो परमात्मा के नाम का जिह्वा से जब शुरू कर दे और ये लगन हो भीतर के उसको हम चाहें तो वो जग जाते हैं। एक बात याद रखना, नाम जब से सब कुछ मिलता है, परंतु किसका उद्देश्य क्या है, नाम जप के वे क्या चाहते हैं, वो जो हृदय से चाहेंगे वो चीज उसको मिल जाएगी। जैसे कल्प वृक्ष होता है, उसके नीचे बैठकर जो मनुष्य कामना करता है वही पूरी होती है, ऐसे ही कामधेनु की बात कही जाती है, चिंतामन की बात कही जाती है, तो वे पूरी करते। इस तरह से नाम जपते हुए हृदय में जिसकी सच्ची लगन होगा उसी तत्व को नाम महाराज जना देंगे। ये तो कल्प वृक्ष है, इस वास्ते वे जग जाएंगे। तो जगने से क्या होगा, ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा अनुपम, जो ब्रह्म सुख है उसका अनुभव कर लेंगे। अनुपा का मतलब उसके उपमा कोई नहीं है कि ब्रह्म सुख कैसा होता है। तो ऐसा नहीं कि जैसा भोजन कर ले तृप्ति होती है, जैसे बढ़िया पदार्थ मिल जाए उसके मिलने तृप्ति होती है, धन संपत्ति वैभव मिल जाए तो मन में बड़ी खुशी आती है, ऐसी कोई उपमा नहीं है। ऐसा जो ब्रह्म सुख है स्वतः सिद्ध सदा रहने वाला, कभी भी किंचित बात भी कमी जिसमें नहीं आ सकती, दुख जिसके पास नजीक फटक नहीं सकता, ऐसा जो अनुपम ब्रह्म सुख है उसका भी अनुभव कर लेंगे। ये जो पहले दोहा आया कि बाहर भीतर जो चाहती उजियार, तो भीतर के उजियाले का ये वर्णन हुआ है, ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा अकथ अनाम नाम अनुरूपा। वो कैसा अकथ है, अभी पहले ये कह रहा है कि नाम रूप है वो अकथ है, अब वो जो ब्रह्म स्वरूप है निर्गुण उसका स्वरूप भी अकथ है, क्योंकि अगुण सगुण दोनों ही अकथ है और इनके नाम की महिमा भी अकथ है। तात्पर्य क्या निकला, ये लौकिक इंद्रियां है मन बुद्धि आदि गए, ये सांसारिक पदार्थों का वर्णन और दर्शन कराते हैं, परंतु परमात्मा की तरफ चलते हुए सब ये कुंठित हो जाते हैं, क्योंकि इनका ये विषय नहीं है। परमात्म तत्व है प्रकृति से भी अतीत और ये सब है प्रकृति के कार्य। ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां शरीर आदि जितने प्राण है ये सब के सब है प्रकृति के कार्य। तो ये कार्य तो पहुंच नहीं सकते प्रकृति तक, प्रकृति का भी ठीक तरह से वर्णन नहीं होता। वर्णन दार्शनिक लोगों ने किया है, परंतु पूरा प्रकृति का चिंतन और वर्णन भी नहीं हो सकता। सबसे बढ़िया हमारे पास बुद्धि है, वो बुद्धि भी वहाँ प्रकृति तक नहीं पहुँचती। प्रकृति के कार्य इधर जो बुद्धि के बाद में कार्य, इन कार्यों में बुद्धि काम करती है, कारण में काम नहीं करती। जैसे मिट्टी से बना हुआ घड़ा है, वो कितना ही बड़ा बना दो क्या संपूर्ण पृथ्वी को अपने भीतर समा लेगा क्या, क्या घड़े में पृथ्वी भरी जाएगी, नहीं भरी जा सकती। ऐसे प्रकृति का कार्य वाणी है मन है बुद्धि है, ये प्रकृति को भी अपने कब्जे में नहीं कर सकते, अपने अंतर्गत नहीं ला सकते। तो प्रकृति से अतीत जो ब्रह्म परमात्मा है वो अकत है अनामय है विकार रहित है आमय, उसमें विकार रोग शोक कुछ नहीं है। ऐसे अनामय और नाम अनुरूप जहाँ नाम है ना रूप है, उसका स्वरूप देखा जाए जैसे काला पीला सफेद आदि रूप होते हैं, ऐसा रूप भी नहीं है, और उसका नाम कहा जाए तो उसको ब्रह्म कहते हैं, उसका नाम नहीं है। किंतु हम लोग नाम रूप में बैठे हुए हैं, इनके जताने के लिए उसका नाम रख करके हम उसका संबोधन करते हैं, परंतु उसका ना नाम है ना रूप है। संतों ने कहा वह नाम रूप आदि नहीं, नको रस भोगी नको रस न्यारा नको अपहरता न करतु व्यवहारा नको विष्णु ब्रह्मा नको ये नगेशम नको आदि शक्ति नको ये महेशम, ऐसे कहा। और कहते कहते नको स्वप्न जागे नको सुख पति नको पद तुरिया नको न मोख मुक्ति, ना स्वप्न है ना जागृत है ना सुसुप्ति है ना कोई तुरीय पद है। ज्यादा से ज्यादा चौथा पद कहा करते हैं, तीन लोक में काल समाना चौथे पद में नाम निशान लगे कोई बिरला, तो वहाँ तुरिया पद भी नहीं, नको स्वप्न जागे नको सुख पति नको पद तुरिया, और न को मोख मुक्ति, वहाँ मोक्ष भी नहीं है, मुक्ति भी नहीं, बंधन भी नहीं, ऐसे अलौकिक तत्व है वो ब्रह्म सुख है। उस अगत अनामय नाम रूप, नाम रूप का है ही नहीं, ऐसे ब्रह्म सुख का अनुभव ही जिह्वा से नाम जप करके इसका अनुभव कर लेते हैं स्वयं अपने आप, जहाँ नाम पहुंचता ही नहीं। ध्यान देना एक मार्मिक बात है कि नाम और रूप नहीं है ऐसे अकथ अनुपम अनामय ब्रह्म सुख का वे अनुभव कर लेते हैं कौन के नाम जी है जपी, नाम का जिह्वा से जप करने वाले। तो जिह्वा, ये जिह्वा इसमें दो इंद्रियां, जिसमें कर्मेंद्रिय है वागेंद्रिय है, तो वागेंद्रिय कर्मेंद्रिय है क्रिया करने वाली, उस जप से जपा तो राम 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 ये क्रिया हुई, इसमें इतनी अलौकिक शक्ति है। तो ज्ञानेन्द्रिया से अगाड़ी अंतःकरण और अंतःकरण की अगाड़ी प्रकृति, प्रकृति से अतीत परमात्म तत्व, उस परमात्म तत्व को जना दे ऐसी शक्ति इस भगवान नाम महाराज में है। इस बात से दार्शनिकों का जहाँ विचार हुआ है गहरा, वहाँ शब्द में एक अचिंत्य शक्ति माना, अचिंत्य शक्ति दुर्बलत्वाद अविद्याया आत्मत्वाद बोध रूपिणा शब्द शक्ति अचिंत्यत्वाद विद्मस्तं मोहान, तो शब्द में अचिंत्य शक्ति होने से मोह का नाश हो जाता है उसको हम जान लेते हैं। तो अचिंत्य शक्ति का क्या, इसका आप चिंतन नहीं कर सकते, इतनी शब्द में शक्ति है, विलक्षण शक्ति है शब्द में। जैसे अपने साधारण रीति से अनुभव करके देखें कि जैसे कोई नींद सोता है आदमी गहरी नींद में सोया हुआ है, तो सोने समय क्या होते है, इंद्रिया सभी मन में, मन सब बुद्धि में, बुद्धि प्रकृति में, प्रकृति अविद्या है वो विद्या में लीन हो जाती है, तब गाढ़ नींद आती है। तो गाढ़ नींद में ये इंद्रिया सभी लीन हो जाती है, कोई किसी इंद्रिय का कोई ज्ञान नहीं, परंतु उसका नाम उच्चारण करके बताया जाए तो वो आदमी जग जाता है उस अविद्या में से। ध्यान देना थोड़ा भी, अचिंत शक्ति कैसी है नाम में वो एक दृष्टांत से बताई जाती है। तो कर्णेन्द्रिय है वो तो मन में, मन बुद्धि में, बुद्धि अविद्या में लीन हो गई। अब कर्णेन्द्रिय यहाँ काम तो नहीं करती, पर उसका नाम लेकर के बोला जाए तो वो कान से सुन लेता है, जग जाता है, नींद से बाहर आ जाता है, नींद खुल जाती है नाम से। तो विचार करो कि नाम का संबंध तो कर्णेन्द्रिय के साथ है, और वो कर्णेन्द्रिय तो बिचारी मन में, मन बुद्धि में, बुद्धि अविद्या में इतने पर्दों के अंदर चली गई, परंतु नाम में, इसमें शब्द में अचिंत शक्ति है, अलौकिक विलक्षण शक्ति है। वो अलौकिक शक्ति है उस अविद्या में लीन हुई बुद्धि, बुद्धि में लीन मन, मन में लीन कर्णेन्द्रिय, उसको भी जगा करके, उसके द्वारा सुना करके सोते हुए को जगा दे। तो शब्द में इतनी शक्ति है उसके नाम में, और इन संपूर्ण जीवों का जो मालिक परमात्म तत्व है वो परमात्म तत्व उस परमात्म तत्व का अनुभव करा दे भगवान के नाम है, उसका जीव से जपने से। नाम जी जप जा गई जोगी, विरति विरंजी प्रपंच वियोगी, ये ब्रह्मा जी के प्रपंच से वियोग करने वाले विरक्त है उनको वो स्वरूप का ज्ञान करा देता है। तो उसका उद्देश्य लक्ष्य उस परमात्म तत्व का हो, और ब्रह्मा जी की सृष्टि में जितने जिससे विरक्त हो उसे प्रपंच से वियोग करना चाहता है, तो दुख संयोग वियोग, प्रपंच के साथ में संबंध रखने से दुखों के साथ संयोग होता है, इससे वियोग होने से वो योग होता है। योग यशमें स्थित होने दुख ही न गुरु ना भी, जिसमें स्थित होने पर बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं होता, ऐसा ब्रह्म सुख ही अनुभव ही उस ब्रह्म सुख का अनुभव हो जाता है। अब जाना चह ही गुण गति जेऊ, ऐसे तो ज्ञानी महात्मा जो उसको अनुभव कर लेते हैं वे। अब दूसरे भक्त बता के जाना चह ही गुण गति जेऊ, नाम जी है जब जान ही तेऊ। अब जो जानना चाहते हैं वो तो अनुभव कर चुके, अब उस तत्व को जानना जिनके मन में है कि हम भी उस परमात्म तत्व को जाने, તો જાના ચહી ગૂઢ ગતિ જેવું, બહુ ગૂઢ ગતિ, માનું સબસે ગહેરી ગતિ, પરમાત્મ તત્વ કા બોધ, બ્રહ્મ કા બોધ, ઉસ ગૂઢ ગતિ કો જો જાનના ચાહતે હૈ તો નામ જી જપી જા નહીં તે હું ઉનકે લીએ ભી કહા કે જીવા કે નામ જપ કરેંગે તો વો ગૂઢ ગતિ કો ભી જાન લેંગે ઓર સાધક નામ જપઈ લય લાયે હોય સિદ્ધ અને મહાદિક ઉપાય ઓર સાધક અગર નામ જપ કરતા હૈ તો યે સાધક હુઆ તીસરા યે લવ લગા કર જપતા તો હોય સિદ્ધ સિદ્ધ હો જાતા હૈ અનિમાદિક સિદ્ધિ અનિમા મહિમા ગરિમા પ્રાપ્તિ પ્રાકામી સિદ્ધો વસિદ્ધો આદિ સિદ્ધિયા હૈ યે સિદ્ધિયા પા લેતા હૈ ઓર લોલા જપે તો જપઈ નામ જન આરત ભારી મિટઈ કુ સંકટ હોઈ સુખારી અરે કુ જો આરત હોતા હૈ દુખી હોતા હૈ સંતપ્ત હોતા હૈ ઉસ દુઃખ સે છૂટના ચાહતા હૈ ભારી આરત હો કરકે અર ભગત કા ભગત નામ કા જપ કરતા હૈ તો મિટે કુ સંકટ વિશાળ સંકટ મે જાતે વો સુખી હો જાતા હૈ એસે ભગવાન વર્ણન ક્યા અબ કહેતે હૈ રામ ભગત જગ ચાર પ્રકારા યે ચાર પ્રકાર કે ભગવાન કે ભક્ત હૈ સુકૃતિ ચાર હું અનગ ઉદારા યે ચારો બડે સુકૃતિ હૈ ઓર અનગ હૈ પાપ રહિત હૈ ઓર સબ કે સબ ઉદાર હૈ તો ચાર કોણ સે હુએ એક તો નામ જી હૈ જબ જાગે જોગી વિરતિ વિરંતિ પ્રપંચ વિયોગી સામાન્ય ઓર બ્રહ્મ સુખઈ અનુભવઈ અનુપા યે જ્ઞાની હૈ પરમાત્મ તત્વ કે જાનને વાલે અગત અનામે નામ અનુરૂપા ઇસકા અનુભવ કરતે હૈ અબ જાના ચાહે ગુઢ જગત યે કોણ હુએ યે જિજ્ઞાસુ હુએ જ્ઞાની ઓર જિજ્ઞાસુ જો ગુઢ ગતિ કો જાનના ચાહતે હૈ જિજ્ઞાસા હૈ તો ઉનકે લીએ ભી જીવા કે જપને સે જાન જાયેંગે તો જ્ઞાની ઓર જિજ્ઞાસુ અબ નામ સાધક નામ જપઈ જે લય લાયે સાધક કોણ હુએ જો સાધના કરતે હૈ કિસ કી કે ધન સંપત્તિ વૈભવ ચાહતે હૈ એસે ભક્ત હોતે અર્થાર્થી તો અર્થાર્થી ભક્ત હૈ ઉનકી ભી સિદ્ધિ હો જાતી નામ જપ સે તો અર્થાર્થી કે બીચ અનિમાદ કી મિલ જાય મને ધન સંપત્તિ વૈભવ લોક કી મિલ જાય ને સિદ્ધિયા મિલ જાતી વૃદ્ધિ ઓર સિદ્ધિ જાકે ખાલે હાજર ખડી હૈ આગે યે સબ કી સભી ઉનકે સામને હો જાતી હૈ તો સાધક નામ જપઈ લય લાયે હોય સિદ્ધિ અનિમાદ કી પાયે ઓર જપઈ નામ જન આરત ભારી યે અર્થ આરત અર્થાર્થી જિજ્ઞાસુ ઓર જ્ઞાની ये चार तरह के भगत है गीता में आया है चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नोर्दुन आतु जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर सब चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति न वे सबके सब सुकृति हैं तो यहां भी बताया सुकृति चारों और अनघ उदारा पाप उनके नहीं है गीता में भी अगाड़ी कहा है कि ये शान पंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता जिनके पाप नष्ट होते हो गए हैं वे दृढ़व्रत होकर के भगवान का भजन करते हैं तो चारों ही अनग है चारों ही उदारा ये भी बात आई वहां उसी में 18वें श्लोक में उदारा सर्वे भी थे ज्ञाने प्राप्त में बताऊ आर्थो जिज्ञा अर्थार्थी ये सब के सब उदार है तो चारों ही उदार है चारों ही अनग है चारों ही सुकृति पाप तो नष्ट हो गए पुण्य बड़े भारी प्रगत हो गए और वे स्वयं उदार हो गए पापों का नाश हो जाना पुण्यों का आखिरी फल नतीजा मिल जाना और उदार होना ये सब के सब चारों ही भक्तों के लिए बताया ऐसे ही वहां चारों ही भक्तों के लिए गीता में यही शब्द आए जो यहाँ राम दिए रामायण में चार भगत जग राम भगत जग चार ही प्रकार चतुर्विधा भजन्ते माम अब विचार करना है थोड़ा सा इन बातों पर कि ज्ञानी होता है वो तो परमात्म तत्व को अनुभव कर लेता है तो उसके तो कोई काम बाकी नहीं रहा अनुपम ब्रह्म सुख का अनुभव कर लेते हैं और जानना चाहते जिज्ञासु है वे तो वे जिज्ञासु वो भी इसको जान लेते हैं और जो अर्थार्थी है धन संपत्ति वैभव आदि मिलना चाहते हैं कि ये हमारे को मिले नाम से कुछ ये भी मिल जाती है और दुख भी होकर नाम से दुख भी मिल जाता है तो चार प्रकार के भक्त हुए गीता ने कहा चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति अर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च
तो गोस्वामी जी महाराज ने और क्रम दिया है, गीता में भगवान ने थोड़ा और क्रम दिया है। नाम वही है चारों भगत, पर वहां कहते हैं आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च, ऐसे चार ज्ञानी बताया भगत बताए। तो आर्त को पहले लिया, आर्त और जिज्ञासु अर्थार्थी पीछे लिया, बीच में जिज्ञासु को लिया, अरे जिज्ञासु के पास में ज्ञानी होना चाहिए। गोस्वामी ने ऐसे ही लिखा, ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा अगत अनाम नामन रूपा जाना चाहिए गूढ़ गति गेहूं। तो ज्ञानी के बाद जिज्ञासु लिया, और जिज्ञासु के बाद में लिया अर्थार्थी, और अर्थार्थी के बाद में लिया अर्थ। तो वहां का अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी, जो जिज्ञासु अर्थार्थी का थोड़ा व्यत्यय कर दिया, और अर्थ पहले है और ज्ञानी से अगाड़ी है, ये दोनों तो अपनी जगह ही है। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च, ज्ञानी का पहले वर्ण हुआ, फिर जिज्ञासु का वर्ण हुआ, फिर अर्थार्थी का वर्ण हुआ, फिर आर्त का वर्ण हुआ। तो आर्त रहे, ज्ञानी है तो अपनी जगह रह गए, बीच में उल्ट पुलट कर दिया थोड़ा सा। तो क्या कारण है इसका, कि वास्तव में ज्ञानी के पास में जिज्ञासु रहना चाहिए। परमात्म तत्व को जो जानना चाहते हैं वे ही तो परमात्म तत्व को जानेंगे, तो जानना चाहते उसके बाद में ज्ञानी हो जाएंगे। और जो अर्थार्थी होगा वो तो धन में रहेगा, अर्थ होगा वो दुख दूर करने में रह जाएगा, और जिज्ञासु ज्ञान प्राप्त कर लेगा। इस वास्ते गोस्वामी जी महाराज ने बड़ा सुंदर प्रकरण लिखा है। रामायण में एक विलक्षणता है, गीता में भी विलक्षणता है। अब उन बातों को अब कहाँ तक कहें, बहुत विचित्रता विचित्रता में भरी हुई है गीता में और रामायण में। दो ग्रंथ मेरे को बहुत ही विलक्षण मालूम देते हैं, बड़े ही अलौकिक मालूम देते हैं, और अलौकिक और बड़े गहरे होते हुए भी ये ग्रंथ कृपा करते हैं। इन ग्रंथों का कोई सहारा ले ले और इनका पाठ करे, इनको इष्ट मान ले, तो उसके भीतर में बहुत सी बातें ये खुद कृपा करके जना देंगे। नहीं जानता है उसको भी जना देंगे, जानता है उसको भी अगड़ी बढ़ा देंगे। ऐसे ये कृपा करने वाले प्रासादिक ग्रंथ है, खुद कृपा करते हैं। परंतु गोस्वामी जी महाराज वर्णन करेंगे तो अनुवाद करेंगे, वो अनुवाद भी ऐसा विलक्षण रीति से करते हैं जो बड़े अलौकिक ढंग से। जैसे आपको अभी ये प्रकरण आया, इस प्रकरण में आया तो जिज्ञासु को हो पहले लाकर रखा जो ज्ञानी के पास में है। तो भगवान ने वहां क्यों रखा, गीता में रखा, उनका क्या तात्पर्य है, उसका भी बड़ा गहरा तात्पर्य। वो तात्पर्य ये है, थोड़ी मेरी बात आ जाती है भाई, तो साधारण जनता की तरफ दृष्टि जाने से मन में होता है कि तुम कह विचार करता है। ये ग्रंथ को समझने वाले उनके तो बहुत ही काम की चीज है, परंतु साधारण लोग क्या समझेंगे, भाई आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च लिखा, और यहाँ ज्ञानी और जिज्ञासु अर्थार्थी और आर्त लिखा। इन बातों को तो पढ़ने वाले ही समझेंगे, तो इतना विवेचन ज्यादा करना शायद उचित नहीं पड़ेगा। परंतु मैं दृष्टि वैसी करता हूँ सरलता से हरेक आदमी समझ सके, इस रीति से कहता हूँ। परंतु विषय थोड़ा तो कर रहा है ही भाई, तो ग्रंथों का विषय है। तो जिज्ञासु है वो आर्त और अर्थार्थी के बीच में लिखने का तात्पर्य है कि आर्त हो चाहे अर्थार्थी हो, परमात्म तत्व को चलने वाले परमात्म तत्व को जान ही जाएंगे, तो अर्थार्थी अर्थ भी जिज्ञासु हो ही जाएंगे, जिज्ञासु होने से ज्ञानी हो ही जाएंगे। इस बात से मदभक्ता जानते मानो की देवान देव जो देवताओं को पूज, देवताओं को जाते हैं, प्रेत भूतों का पूजन कर प्रेत भूतों को प्राप्त करते हैं, और मेरा पूजन करता है मेरे को प्राप्त होते हैं, चाहे अर्थार्थी हो चाहे अर्थ हो चाहे जिज्ञासु हो चाहे ज्ञानी हो। परमात्मा के साथ संबंध हो जाने के बाद फिर उनका पतन नहीं होगा किसी रीति से। तस्मात केना उपाय न मन कृष्ण निवेश, किसी उपाय से भगवान में मन लगा दो, जो परमात्मा तत्व वास्तव में है उसमें मन लगा दो, तो किसी तरह से लगा दो भाई। काम है, क्रोध है, लोभ है आदि अवगुणों के बस में भगवान के भगवान को भगवान में लगा दो तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जितने जितने बीच में ये व्यवधान रखेंगे उतनी देरी लगेगी, परंतु तो संबंध भगवान से जुड़ गया। इस वास्ते कर्मों के साथ संबंध हमारा होता है तो सकाम और निष्काम होने से दो तरह का फल होता है। सकाम भाव से कर्म करेंगे, शुभ काम, व्रत करें, उपवास करें, यज्ञ करें, दान करें, तप करें, तीर्थ करें, व्रत करें आदि आदि लेंगे नियम, तो हमारा सकाम भाव होगा तो कामना पूर्ति होगी। और निष्काम भाव होगा तो अंतर्गत शुद्ध होकर परमात्मा की तरफ चलेंगे, दोनों तरह के होंगे। पर भगवान के भजन में लगने वाला किसी रीति से होगा तो अंत में परमात्मा के साथ में उनका संबंध हो गया तो उनका कल्याण होगा ही, ये बताने के लिए भगवान ने अर्थासी अर्थ के बीच में जिज्ञासु को रखा। ऐसे नाम दीह जब जा गई जोगी, विरति विरंच प्रपंच वियोगी, ब्रह्म सुखाई अनुभवाई अनुभा। ये चार तरह के राम भगत जग चारी प्रकारा, सुगति चारों अनग उदारा, चहू चतुर कहू नाम अधारा। चारों जो भक्त होते हैं उन चारों ही भक्तों में जो चतुर भक्त है उनके नाम का ही आधार होता है। चतुर वे कहलाते हैं जो बहुत सी चीजों में से सार सार चीज वो ले लेते हैं। वे समझते हैं भाई सब में सार चीज क्या है, हम किसका आश्रय लें तो जिससे आरती हमारी दूर हो जाए, दुख भी दूर हो जाए और धन भी दूर हमारे वो दूर है वो मिल जाए और हमारी जिज्ञासा भी पूरी हो जाए। और ज्ञानी के तो कोई कामना रहते ही नहीं, वो तो विशेष ही बिल्कुल निष्काम है। इस बात गीता ने भी आपको जिज्ञासार्थी ज्ञानी च मानो ज्ञानी की विलक्षणता बताई कि इसमें कोई कामना नहीं है। तो तीनों ही दूर हो जाए, तीनों ही प्राप्त हो जाए, उसके लिए उपाय क्या है कि तहू चतुर कहू नाम आधारा। ये नाम है, ये एक नाम महाराज ऐसा विलक्षण है, चाहे आर्थ हो चाहे अर्थार्थी हो चाहे जिज्ञासु हो, सबको परमात्म तत्व की प्राप्ति भी करा दे और धनादि की प्राप्ति करा दे तो नाम आधारा चारों के लिए। चाहू चतुर कहू नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। तो चारों के नाम आधार, तो ज्ञानी भी भगवान का नाम करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं। इस बात लिखा आत्मा रामाष्ट मुनयो निर्गंता तिरुक्रमे कुर्मंत्य हेतु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। आत्मा रामाष्ट मुने अपने स्वरूप में नित्य निरंतर मस्त रहते आत्मा राम, तो वहां कोई किसी मात्र किंचित मात्र भी इच्छा नहीं। आत्मा राम मुनि होते तो आत्मा राम का तात्पर्य अपने स्वरूप में स्थिर रहने वाले, तो अपने स्वरूप में स्थित रहो और परमात्मा को प्राप्त करो, इनमें थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा ख्याल करें भाई। अपने स्वरूप में स्थित होने पर भी मुक्ति हो जाती है, कल्याण हो जाता है, उद्धार हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। परंतु परमात्म स्वरूप को जानने से ये प्रेम प्रकट होता है, प्रेम अलौकिक विलक्षण, वो प्रेम सगुण के निर्गुण के दोनों में आता है, तो वो बिना परमात्म तत्व के उतना प्रकट नहीं होता। ऐसे तो प्रेम जिज्ञासु में होता है, अर्थार्थी आत्मा भी होता है, परंतु विशेष शुद्ध निर्मल प्रेम परमात्मा के सन्मुख होने से होता है। परंतु मुक्ति आत्मज्ञानी की भी हो जाती है। जैसे हमारे दार्शनिकों में जैन दर्शन है तो जैन दर्शन में आत्म तत्व का विवेचन है और कर्मों का विवेचन है, तो कर्मों से ऊंचे उठने पर वे अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं मोक्ष शिला पर।
जैसे हमारे दार्शनिकों में जैन दर्शन है तो जैन दर्शन में आत्म तत्व का विवेचन है और कर्मों का विवेचन है, तो कर्मों से ऊंचे उठने पर वे अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, मोक्ष शिला पर पहुंच जाते हैं और अपना स्वरूप रहता है प्रकाशमान, केवल ज्ञान, ऐसे ज्ञान स्वरूप से हो जाता है। तो वो ज्ञान स्वरूप में नित्य निरंतर रहने वालों को कहते आत्मा राम, भी आत्मा राम है, आप काम है आत्मा राम है, और कैसे क्या गुरु चार भेद बताए भागवत में, तो आत्मा राम है, अपने आत्मा में अपने स्वरूप में ही रमण करते हैं, नित्य निरंतर वाणी प्रकाश स्वरूप केवल ज्ञान ही ज्ञान है, वहां उसमें करना नहीं है। ये कर्मों का संसार रह गया पीछे, जिससे ऊंचे उठ गए वो केवल ज्ञान में हो गए, केवल ज्ञान में, केवल ज्ञान, तो वे आत्मा राम हो गए। परंतु परमात्मा तत्व है जिसको भारतीय दर्शन को हो, सनातन सिद्धांत को वैदिक संप्रदाय में ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, तो वो आत्म स्वरूप से भी विलक्षण है। आत्मा को उसका अंश बताया है, ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, तो वो परमात्मा का अंश है ईश्वर अंश, वो जीव अविनाशी है, चेतन है, शुद्ध है और सुख राशि सुख स्वरूप है। तो आत्म स्वरूप में सिद्ध होने पे सुख राशि आरंभ हो जाएगा, विलक्षण किसी बात का कभी किंचित मात्र भी कष्ट नहीं होगा। तो केवल ज्ञान प्राप्त होने पर वो सुख राशि हो जाएगा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, स्वाभाविक वहां सुख कोई संयोग जन्य नहीं है। जैसे लोभी को धन मिलने से सुख होता है, मोही को जैसे कुटुंब के मिलने से सुख होता है, तो ये सुख दूसरे के संबंध से होता है, इसको तो दुखों का कारण माना है। और इसका जो स्वरूप है वो सहज सुख राशि है, स्वाभाविक ही सुख में मग्न है। तो केवल ज्ञान होने से स्वाभाविक सुख में ही मग्न रहते हैं, उसके लिए किंचित मात्र कभी किसी वस्तु की, काल की, देश की, वस्तु की, व्यक्ति की, वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए वो सहज सुख राशि है। तो वो परमात्म तत्व का अंश है, और परमात्म तत्व है वो तो विलक्षण है ही सदा से ही। इस बार से ईश्वर अंश जीव आत्मा राम आत्मोनय निर्ग्रंथा, जो शास्त्रों के ग्रंथों से ऊंचे उठ गया, अथवा ग्रंथि भेद निकला हो गया, जैसे ग्रंथि मिट गई, ऐसे कुर्वंती अहेतुकीं भक्तिम, वे जो आत्मा राम पुरुष है वे भगवान की भक्ति करते हैं, वो परमात्मा तत्व जो है जिसके वे अंश है उसकी अहेतुकी भक्ति करते हैं। दूसरों की भक्ति में तो हेतु होता है, जैसे अर्थ होता है दुख दूर करने के लिए भजन करता है, और अर्थार्थ भी होता है धन के लिए, अनिमादिक सिद्धियों के लिए साधक भजन करता है, और जिज्ञासु होता है परमात्मा तत्व तो को जानने के लिए भजन करते हैं। परंतु उस परमात्मा तो अपने स्वरूप का बोध करने वाले भजन करते हैं, वो किसी कामना को लेकर नहीं है। कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिम, कहते क्योंकि इत्थं भूत गुणो हरि, भगवान ऐसे गुण वाले ऐसे विलक्षण हैं कि उनमें चित्त आकर्ष हो जाता है, कोई कामना किंचित मात्र जिनके स्वप्न में भी नहीं, ऐसे उनका अनुभव होता है। तो भक्ति अहेतु की भक्ति होती है, वो प्रेम भक्ति विलक्षण एक अलौकिक आनंद है। तो ऐसे चारों प्रकार के भक्त होते हैं, तो चारों प्रकार के भक्तों में उदाहरण आता है अर्थार्थी भक्त में ध्रुव जी का नाम लिया जाता है। ध्रुव जी की सीमाता ने महाराज की राजा की गोदी से नीचे उतार दिया और कहा तो चल यहाँ से लायक नहीं है, वो गए माँ के पास, माँ ने कहा कि बेटा बात तो ठीक, तेरी छोटी माँ ने कहा वही बात है, भजन किया नहीं तो मैं भजन करूँगा। तो राज गद्दी की वासना लेकर के भजन में गए, वो अर्थार्थी भक्त कहलाते हैं। ऐसे गजेंद्र हैं, वो डूबने लगा बेचारा, जब डूबने लगा तो राजन शिक्षितम, पहले जन्म में जो शिक्षा पाया हुआ था सूत्र था, वो सूत्र उन्हें पढ़ा, भगवान को याद किए। क्यों, जब आदमी में आफत आती है ना तो उसकी वृत्ति संसार से हटती है, और संसार से हटते ही भीतर में प्रकाश मिलता है। ये अंधेरा संसार में मन लगाने से होता है, पहले बताया ना नींद है सब, फिर जगह जामन जागे जोगी, ये जामनी रात है सोते हुए, वो आफत होने से जग जाता है। जैसे आदमी नींद में सोया हुआ हो, उसके स्वीच बोल जाएगा आप तेज जग जाएगा, आपत्ति में जग जाता है आदमी। इस वास्ते जो ऐसे भजन नहीं करते उनके ऊपर आफत आती है, आफत आने पर भी नहीं करते उनको तो क्या खा जाए, पर आफत में आदमी हो जाता है, वो लग जाते हैं भगवान की तरफ, तो ऐसे आज तो होकर के गजेंद्र ने भगवान को याद किया। तो भगवान को याद किया तो पहले जन्म की शिक्षा थी तो इतना ही याद आया कि कोई एक ही परमात्मा है जो सबका मालिक है, आपत्ति में पुकारा जाता है और वो रक्षा करता है, ऐसा ज्ञान हुआ। ये स्वास्थ्य यह कष्ट ने सो बलिंद प्रसन्न वेगात विधावतो वृषम गीतम प्रपन्नम परिपाति यद्भयात मृत्यु प्रधावत चरणम तमीम ही। भागवत में गजेंद्र को कहता है, उस गजेंद्र महान अंत है, ऐसे भयभीत होकर के जिसकी शरण होता है और शरण होने में भयात परिपाति भय से संसद से रक्षा करने वाला है, तम अरम उस परमात्मा के शरणागत वत्सल के मैं शरण हूँ उस परमात्मा के। अब उस परमात्मा यह जो परमात्मा है तो वो रूप ऐसे भगवान की प्रगट होकर के उसे दुख को दूर कर देते हैं। वो आत्मभविता में गजेंद्र लिया जाता है, द्रौपदी मिल जाती है सीखने का उस समय में, तो ऐसे भी आत्मभक्त है उनका भी भगवान दुख दूर करके और प्राप्ति भी करा देते हैं। जिज्ञासु जैसे अर्जुन है उस समय आदि ये लिए जाते हैं, जिसमें एकादश स्कंद में उद्धव गीता के नाम से भगवान ने उपदेश दिया या भगवद गीता के नाम से उपदेश दिया, तो ये जिज्ञासु भक्त कहलाते हैं। ऐसे ज्ञानी भक्त कुलदेव आदि गए जो परमात्म तत्व में नित्य निरंतर रहते हैं, उनके कोई किंचित मात्र की कामना नहीं, परंतु प्रेमी प्रेम जो चीज है वो ऐसे मुनि भी लग जाते हैं। तो भागवत की कथा आती है जो आप सुनते ही होंगे, तो उसमें आया है कि सुदेव जी महाराज जन्म से ही निकल गए थे, 12 वर्ष गर्भवास में रहे, बाहर नहीं आए, क्योंकि बाहर आते ही परमात्मा की माया लिप्त मुझे आएगी तो मैं फंस जाऊंगा, तो भीतर ही भगवान के भजन में लगे रहे, छोटे से ही बने रहे, बड़े बने ही नहीं। जब ये बाहर आए तो बाहर आते ही मरा चल दिए, यम प्रब्दगंध अनुभेद मपेद कृत्यम अनुभेद मरा जिन संस्कार भी नहीं हुआ, अरे ज्ञात कर भी नहीं हुआ मरा दूजा कौन करे, ब्याज जी ने कर दिया तो कर दी अनुभेदम अपेद कृत्यम, उनके कृत्य कोई बाकी नहीं था, कृत कृत्य देव ऐसे वो चले गए। तो विरह कातरा जो व्यास जी महाराज विरह में कायर हो गए, बेटा चला गया, बेटा 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 कहते कहते पीछे आवाज देते पीछे चले जा रहे थे, तो वहां हमारा पुत्र जितन में गया तरवो भी नहीं दू, तो पुत्र पुत्र कहे तो उधर से आवाज आती है पहाड़ों से जंगल से कि पुत्र पुत्र पीछे आती, तन्मय तया वो सबके साथ एक हुए हुए सुखदेव मुनि है, ऐसे दृश्य बोल उठे, ऐसे संपूर्ण के हृदय हृत में है एवं गर्भवन करने वाले सबके हृदय में विराजमान ऐसे मुनि। तो भागवत कहते हुए सुखदेव जी को नमस्कार कर, ऐसे सुखदेव तुम व्यास जी के बुलाने पर भी नहीं आए, जंगल में बैठ गए वहीं अपने भजन में समाधि में नित्य निरंतर लग गए, व्यास जी पीछे आ गए। तो व्यास जी महाराज ने भागवत ग्रंथ बनाया, बना करके अपने ब्रह्मचारियों को सिखाया और ब्रह्मचारी लोग भी सीखते थे पढ़ते थे, उन ब्रह्मचारियों का भाई संविधा हरण के लिए संविधा लिया, पुष्प लिया, पूजन के लिए यज्ञ के लिए उस जंगल में चले गए, जिस जंगल में व्यास पुत्र सुखदेव मुनि बैठे भजन ध्यान कर रहे थे। तो वहां वे ब्रह्मचारी श्लोकों को पढ़ते हैं, ओ बकीयम स्तन काल भूतम जिधान तया पाय दभ्य साध्वी ले गतिम धात्म तथोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। लोग पढ़ते हैं तो उसका अर्थ होता है, हो, बड़ी आश्चर्य की बात है, विलक्षण बात है। बकासुर की बहन भूतना अपने थनों में कालकूट जहर लगा दिया, जहर का बच्चे के स्पर्श हो जाए तो मर जाए, ऐसा जहर लगा करके और जिगान से मारने की इच्छा से वो कृष्ण भगवान जो छोटे से बालक है उनके मुख में दे दिया। जिघांसाया पाए जब से साधु असाध्य महान नीचे आत्म करने वाली ले भे गतिम धातु की काम, उसको वो गति मिली जो धाय माँ को मिलती, प्यार पूर्वक स्नेह पूर्वक दूध पिलाकर धाई होती वो पालन करती है बालक का, तो उस बालक ने क्या क्या धाय को गरी देने वाली जसमत की गति पाई लाल जी को मुख देखने। यशोदा की गति दे दी मैं वे वे गतिम धातु किताब सतोजिंग आलम शरणम ब्रजे, इसके सिवाय कौन ऐसा देहद होगा जिनकी अवस्थरण जावे, ऐसा श्लोक सुना मैंने सुखदेव मुनि ने सुना तो पूछा बालगुरी ये कहाँ का श्लोक है, कभी ये श्लोक तो भागवत का है, वो भागवत कहाँ ऐसा ग्रंथ है, उस दयालु का वर्णन है, कहाँ हम पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हो व्यास जी महाराज के पास, भाई ये तो श्रम बड़ा हम भी पढ़ेंगे पढ़ा तो ले गए। तब सुखदेव जी महाराज ने भागवत सुना महाराज वे तो भागते ही है जन्म से ही भागते, पर इस श्लोक से आकृष्ट हो गए भगवान के गुणों से, तो पूर्वंती आए तुम जो भगते हैं उनके क्या करना करना था हमारा अवैध कृत्यम आरंभ नहीं कह देते हैं, करना काम बाकी रहा है। ऐसे ज्ञानी सिद्ध महात्मा तो आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थ ज्ञानी वे भी भगवान की अहेतु की भक्ति करते हैं, तो तमोचतर का नाम आधारा नाम का आधार सबके हैं, ज्ञानी वादी कुछ भी नहीं चाहिए। इस वाद भागवत में आया अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदार अधी, कुछ भी कामना नहीं कुछ चाहिए हमारे कुछ नहीं चाहिए, बोलो क्या करो बच्चे को। दूसरे को पूछा है तुम्हारे क्या चाहिए, हमारे तो लोग और परलोक सब तरह का सुख चाहिए, बोलो क्या करें, कि सब तरह का सुख चाहते राम राम दो बच्चे को, और कोई सब तरह का सुख कोई नहीं दे सकता। तीसरा पूछा आप क्या चाहते, हम तो बाबा कल्याण चाहते हैं अपने जीव का कल्याण मुक्ति हो जाए और कोई इच्छा नहीं है, तो क्या करें फिर हम लोग अकाम सर्व काम होगा मुख काम उदार ही तीव्र भक्ति योग लेना यदि पुरुषम परम, तीव्र भक्ति योग के द्वारा परम पुरुष का ध्यान करे भजन करे, तो चारों के लिए भक्ति है भगवान का भजन है वो एक समान है। यहाँ तीन बताए अकाम सर्व काम होगा मोक्ष काम उदाहरण ही तीव्र भक्ति योग ये पुरुषम परम, उनके लिए सत्ता चतुर कहूँ नाम और हरा और ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा, ज्ञानी भगवान को अधिक प्यारा लगता है। गीता में तो कह दिया ज्ञानी तो आत्मा ही हो मैं बताऊ, ज्ञानी तो मेरा स्वरूप है, क्योंकि भगवान का ही स्वरूप है, वो भगवान में ही चल ले जाता और कोई स्वरूप जो है ही विशेष प्यार। तो विशेष प्यार है क्योंकि कोई कामना नहीं। एक बात आती है भाई ध्यान देकर सुने, हम किसी से स्नेह करें किसी वस्तु के लिए तो वस्तु के लिए स्नेह करते हैं तो उससे स्नेह नहीं हुआ, वो वस्तु से हुआ। दुकानदार भाई दुकान मानकर बैठे हैं, दुकान की वस्तुएं बहुत अच्छी लगती है सजा कर रखते हैं और सजाई हुए में घर साफ कर देते हैं तो दिखने में रज्जी लग जाएगी तो लोग का चित्त आकर्षित नहीं होगा, तो उसको टूट कर साफ कर एकदम ऐसे ठीक कर दे तो देखने वाला खिंच जाए। ऐसी वस्तुओं का बड़ा लाड प्यार करता है, बहुत सजा कर रखता है पर पैसे आधे पट दे देता निकाल कर सजाई हुई, क्यों कि पैसों के लिए है, तो उनकी सजावट थोड़ी करना है, सजावट पैसों के लिए। तो वो पैसों से प्रेम करता है, वस्तुओं से प्रेम नहीं करता है। ऐसे कोई मिनिस्टर से किसी आई आप ऐसे उधर से भला करे, भेंट पूजा भी करे, आवादरी भी करे, मतलब परमिट लेना थोड़ा सा कोई आज्ञा ले रही है व्यापार के लिए, इस वर्ष उन अवसर से मतलब नहीं, मतलब तो उससे तो जिससे मतलब होता है उसी का ही वो प्रेम होता है, दीखने में और जगह दीखे उन्हें। तो अर्थ अर्थात जिज्ञासु है वो भगवान का भजन करते हैं, तो भगवान कहते हैं भाई तुम्हें तो दुख दूर करना है, तुम्हें तो अनुमानित सिद्धि से अर्थ चाहिए, तुम्हारे जिज्ञासा परमात्म तो वो जानना चाहते हो, परंतु ज्ञानी तो कुछ नहीं चाहता, तो ज्ञानी तो केवल भगवान के लिए लगा हुआ, तो वो अत्यंत प्यारा लगता है, और उनकी तो कामना साथ में लगी है ना। इस वास्ते उदारा सर्वे वे ज्ञानी तो आत्मेयमे मतुन आत्मस्तुतात्मा मावे वाली, मुझे परमात्मा में ही लगा हुआ है, इस वास्ते वो विशेष प्यारा होता है, क्योंकि विशेष प्यारा क्योंकि ये यदा माम प्रपद्यन्ते सुखी भजाम, वो भी तो विशेष तरह भगवान में लगा है, और किसी में लगा नहीं तो भगवान भी उसमें यथा तथा लग जाते पूरे, और दूसरे दूसरा कामना भी रहता है, तो वो कामना है वो बीच में थोड़ी सी गड़बड़ कर देता है, जो चाहना भीतर बन जाती है वो पूरा प्रेम होने नहीं रहता। इस बार से ज्ञानी वो विशेष दिया है, चहु श्रुति नाम प्रभु, ये चार प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ, बहुत संक्षिप्त में कहा है। अच्छा
आगे का अंश अप्राप्य है।
ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा सन 1980 में हुए। इन प्रवचनों के भावों की गीता प्रेस गोरखपुर से पुस्तक छपी है, जिसका नाम है मानस में नाम वंदना।